अलग हिंदी पॉडकास्ट होने वाला है। इस पॉडकास्ट की वाइब थोड़ी सी डार्क होगी, थोड़ी सी ब्रो टाइप की होगी, क्योंकि अगर आपने इन दोनों शब्दों को साथ में डाल दिया, ब्रो प्लस डार्क इक्वल्स इंजीनियर, वो मैं हूँ, और इंजीनियर आपको डार्क फिल्म रिकमेंडेशंस देगा। ये सारी की सारी फिल्म्स इंग्लिश फिल्म्स हैं, बट आई फील कि कोई कोई ऐसे कॉन्टेंट पीसेज होते हैं जो आप अगर लाइफ में उन पीसेस को देखोगे ना, वो पीसेस आपको बदल देते हैं, और इस तरह के कंटेंट पीसेस को हम कहते हैं डार्क सिनेमा। ये है मेरे टॉप 10 डार्क सिनेमा रिकमेंडेशंस। इस पॉडकास्ट में अब मैं थोड़ी गालियाँ दूंगा, क्योंकि फील्स के साथ बात करना है और ऑथेंटिकली बात करना है। तो बेसिकली मुझे ये कहना है कि ये सारी के सारी फिल्म्स ने मेरी तो ले ली थी, मुझे बहुत बदल दिया, आपकी भी लेगी हर एक फिल्म। फिल्म नंबर 1, गेट आउट। देखो ये मूवी अगर नहीं देखी है। ये मेरी और आशीष चंचलानी की भी एक फेवरेट हॉरर फिल्म है। हॉरर फिल्म एग्जैक्ट नहीं है, भूतों के बारे में नहीं है, ये बहुत अलग किस्म का हॉरर है। गेट आउट की एक अंडरलाइंग मैसेज भी है रेसिज्म के बारे में, पर मेनली फिल्म एक बंदे के बारे में है। बंदा अफ्रीकन अमेरिकन है, उसकी गर्लफ्रेंड वाइट अमेरिकन है, कॉकेशियन। ये वो बंदी के घर पर जाता है और वो बंदी के घर में बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती है, और वो स्लोली वो उस घर को डिस्कवर करता है, और उसे डाउट्स होने लगते हैं कि इस फैमिली में कुछ अलग हो रहा है। मैं आपको प्लॉट के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, पर जिस तरह की एक्टिंग की है लीड एक्टर ने, वो फैमिली ने, जिस तरह की राइटिंग है, जिस तरह का साउंड स्कोर और एडिटिंग है, आप सालों तक इस मूवी के बारे में सोचते रहोगे। मेरे ख्याल से ये मूवी कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो आई गेस डाउनलोड करके देख लो, पायरेसी जिंदाबाद। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ यार, एनीवे, पायरेसी जिंदाबाद नहीं, पायरेसी मुर्दाबाद, बट देख लो ये फिल्म, आपके दिमाग पर लात पड़ेगी और फिर आपका दिमाग खुल भी जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर है की एन पील के, जॉर्डन पील। अगर आपने की एन पील के वीडियोज़ कभी यूट्यूब पर देखे हैं, आपको सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत कुछ समझेगा। लोग कहते हैं कि सबसे मुश्किल जॉनर होता है कॉमेडी, और उसके साथ साथ एक और मुश्किल जॉनर फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव होता है हॉरर। तो एक इंसान जिसने इतने सारे कॉमेडी के स्केचेस पर काम किया, आप ही सोचो कि उनके फिल्म मेकिंग के स्किल्स क्या होंगे, और उनकी जितनी भी फिल्म मेकिंग की स्किल है, उन्होंने इस पूरी की पूरी स्किल को एक मूवी में डाल दिया जिसका नाम है गेट आउट। ये एक हॉरर फिल्म है जिसमें बहुत कॉमेडी मोमेंट्स भी हैं, तो अगर आपको लग रहा है ना कि ऐसे भूत हाँ करके निकल के आएगा, वैसी फिल्म नहीं है, बहुत रियल फिल्म है। ये थिंकिंग हॉरर है, साउंड इफेक्ट्स के थ्रू आपको डराया जाता है, स्टोरी के थ्रू आपको डराया जाता है, एडिटिंग के थ्रू आपको डराया जाता है। अगर एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स और स्टोरी की बात की जाए, तो फिल्म नंबर 2 के बारे में बात करना ही है। मेरे सारे के सारे एडिटर्स को ये फिल्म दिखाता हूँ। ये भी शायद अब कोई OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है, पर कहीं से निकाल कर इस फिल्म को देखो। मेरे दो एडिटर्स यहाँ बैठे हैं, बोलो कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। द शाइनिंग फिल्म देखो, डरो। उसके लीड एक्टर है जैक निकल्सन, जो मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम है। उनके जैसी एक्टिंग, उनके जैसे एक्सप्रेशंस, उनके जैसा साइकोनेस, पागलपन आपने कहीं नहीं देखा होगा। अगर आपको लगता है कि नाना पाटेकर का साइकोनेस स्क्रीन पर निखर कर आता है, आपने जैक निकल्सन को अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। द शाइनिंग बहुत अजीब डरावनी फिल्म है, उसमें है थोड़े से भूत प्रेत के एलिमेंट्स हैं, पर अगेन आजकल ना लोग कंजोरिंग के बारे में बात करते हैं, द नन जैसे फिल्मों के बारे में बात करते हैं। ये हॉरर फिल्म्स ना जंप स्केयर्स पर रिलाय करते हैं, साउंड म्यूजिक पर रिलाय करते हैं, वो डरावने से भूत प्रेतों पर रिलाय करते हैं। द शाइनिंग सिर्फ स्टोरी और डायलॉग्स पर रिलाय करती है। जो अजीब चीज़ें होती हैं मूवी में, जो अजीब स्टोरियाँ होती हैं मूवी में, ओहो, कुछ ऐसे मोमेंट्स है फिल्म में जहाँ आपको पॉज करके अपने दोस्त को देख के ये पूछना पड़ेगा कि मैंने इमेजिन किया कि ये सच में मूवी में हो रहा है। कभी कभी फिल्म में ना म्यूजिक ऐसे चढ़ता है और आपको लगेगा कि हाँ भूत आ रहा है, और फिर कुछ नहीं होता। आपकी दिमाग की लेगा वो डायरेक्टर। इस फिल्म के डायरेक्टर है स्टैनली क्यूब्रिक। क्या डायरेक्टर है। मेरे को लगता है स्टैनली क्यूब्रिक को भगवान और डेविल ने साथ में मिलकर बनाया। भगवान ने कहा मैं इसको टैलेंट दे दूंगा, डेविल ने कहा कि मैं इस दुनिया में मेरा एक राक्षस भेज दूंगा, और उन्होंने भेज दिया स्टैनली क्यूब्रिक को द शाइनिंग बनाने के लिए. प्लीज द शाइनिंग देखो अगर आपको फिल्म मेकिंग अच्छी लगती है तो. मूवी नंबर 3, चलो हॉरर से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं. मेरे एक फेवरेट एक्टर है टॉम हैंक्स, जिन्होंने फॉरेस्ट गंप में एक्ट किया है. आपको तो ये पता ही है कि बियर बाइसेप्स फॉरेस्ट गंप के कितने बड़े फैन हैं. मैं कहते रहता हूँ अगर आपको लाइफ के बारे में सीखना है, मोटिवेशन चाहिए, तो फॉरेस्ट गंप देखिए. टॉम हैंक्स की एक और मूवी जो आपके दिमाग को एफ कर देगी है कास्ट अवे. कास्ट अवे एक बंदे की स्टोरी है. बहुत आम आदमी है वो, बहुत नॉर्मल है, जॉब करता है, जॉब के बारे में सोचता रहता है. उसकी एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहता है. वो लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता है, टॉम हैंक्स का कैरेक्टर. और फिर अचानक से एक फ्लाइट के दौरान उनकी फ्लाइट क्रैश हो जाती है और ये एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं अकेले. एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल इंसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं. सर्वाइवल के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, आम इंसान है, आपके जैसे मेरे जैसे. और एक आम इंसान की कहानी दिखाई है कि वो एक छोटे से आइलैंड पर क्या करते होंगे. मूवी में बहुत डार्क मोमेंट्स हैं, उनका सुसाइड अटेम्प्ट दिखाया गया है, कुछ पेनफुल से सीन्स हैं. मूवी में मोस्टली बैकग्राउंड स्कोर इतना कुछ खास नहीं है, बहुत कम म्यूजिक डाला है मूवी में. पर एंड में टॉम हैंक्स ऑलमोस्ट पागल हो जाता है और तब डायरेक्टर ने डाला है म्यूजिक, दुखी म्यूजिक. वो म्यूजिक आपके माइंड को एफ कर देगा. मूवी नंबर 4, एक ऐसी मूवी जिसको देखकर मुझे तुरंत लगा कि ये मेरे ऑल टाइम टॉप 5 मूवीज में पहुंच गई है. वो मूवी मैंने देखी अभी पिछले महीने, हॉटस्टार पर मिलेगी, डिज्नी हॉटस्टार पर. डिज्नी पिक्सार की मूवी है सोल. सोल रिलीज होने वाली थी थिएटर्स में, कोविड की वजह से थिएटर में नहीं रिलीज़ हुई. और इस कोविड पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से बहुत कम लोगों ने टेनेट देखी, उसी तरह से बहुत कम लोगों ने सोल देखी है. सोल एक एनिमेटेड फिल्म है और एनिमेटेड शब्द सुनकर आपको लगेगा कि यार बच्चों के लिए, मुझे नहीं देखनी. ये अडल्ट एनिमेशन है, अडल्ट मतलब उस टाइप की अडल्ट एनिमेशन नहीं, नॉर्मल एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग. क्या होता है ना, एनिमेशन के थ्रू और एनिमेशन की एडिटिंग के थ्रू आप बहुत कुछ ऐसे चीज़ें कह सकते हो जो आप लाइव एक्शन से नहीं कह सकते. ये फिल्म है मौत के बारे में, डेथ के बाद क्या होता है, कल अगर आप मर गए तो आपकी सोल को क्या होता है. अडल्ट्स के लिए बनाई गई है ये फिल्म. हर साल मैं एक बड़ी स्पिरिचुअल बुक पढ़ता हूँ और कुछ बहुत ही गहरे लाइफ लेसन होते हैं उन स्पिरिचुअल बुक्स में. सोल को जिस इंसान ने बनाया उन्होंने डेफिनेटली स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी है, क्योंकि इस मूवी में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेसन्स है. सोल देखो, बहुत ही मजेदार फिल्म है, प्यारी फिल्म है, आपको बहुत मजा आएगा, लाइफ के बारे में बहुत सीखोगे. मेरे जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर वाले फ्रेंड्स हैं जो मेरे नेटवर्क में है, सभी ने सोल को देखा और सभी ने यह कहा कि ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है, प्लीज देखो. अगर आपने अब तक नहीं देखी है ना सोल, अब आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है. उतनी अच्छी फिल्म है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं. थोड़ी डार्क फिल्म है क्योंकि डेथ के बारे में, पर डेथ से ज्यादा पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में है सोल. ये शायद मेरी टॉप रिकमेंडेशन है इस पूरी लिस्ट में से, और एनिमेटेड फिल्म है. पर चलो डार्कनेस के बारे में फिर से बात करते हैं. लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म है 5 नंबर पर. इस फिल्म का नाम है शटर आइलैंड. पागल खाने के बारे में कोई कोई लोग डरते हैं ना पागल खाने से, वैसी फिल्म है. वो पागल खाने का खौफ आपके दिल में भर गया. इस फिल्म के डायरेक्टर है मार्टिन स्कोरसेजी, एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी फिल्म मेकर. मान लो ये हॉलीवुड के मणि रत्नम प्लस करण जौहर प्लस डेविड धवन ऑल इन टू वन है. बहुत ही तगड़े डायरेक्टर है, बहुत दिमाग डालते अपने फिल्म्स में. और इन्होंने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई है. यूजुअली बायोग्राफिकल फिल्म्स बनाते हैं, पर ये है वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स. लियोनार्डो डिकैप्रियो को एक ऑस्कर मिलना चाहिए था इस मूवी के लिए, नहीं मिला. अगर आपको कैमरा वर्क अच्छा लगता है, अगर आपने कभी वीडियोग्राफी किया, फोटोग्राफी किया, तो आपको पता चलेगा कि यार कैमरे के थ्रू आप बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग कर सकते हो. कैमरा वाली स्टोरी टेलिंग शटर आइलैंड में बहुत अच्छी तरीके से की है. इतनी बड़ी प्लॉट ट्विस्ट है एंड में, आपका दिमाग ना एकदम मेल्टडाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आई स्वेयर कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार मूवी ख़त्म होने के बाद भी मूवी चल रही है, मूवी पागल खाने के बारे में। और ये मूवी देखकर ना आप खुद से ये पूछोगे कि यार मुझे भी शायद पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। बहुत अजीब फिल्म है, बट अच्छी फिल्म है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्टिन स्कोर्सेज़ी ने बनाई, सोचो। ओके, चलो थोड़ा लाइट हार्टेड कर देते हैं। अगली फिल्म दोस्ती के बारे में है, मूवी नंबर 6 दोस्ती के बारे में, पर एक और अंडरलाइंग सब्जेक्ट है, कैंसर। इस मूवी के एक्टर्स हैं जोसेफ गॉर्डन लेविट और सेथ रोगन, बढ़िया कॉमेडिक एक्टर्स हैं, कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर्स हैं। थोड़ी आर्टसी फिल्म करी है उन्होंने। इस फिल्म में दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। जोसेफ गॉर्डन लेविट को कैंसर हो जाता है और उनका पूरा कैंसर का प्रोसेस दिखाया गया है। अगर अभी आपको लगेगा कि यार मुझे कैंसर की फिल्म नहीं देखनी, क्यों देखूं मैं फिल्म, मुझे दुखी नहीं फील होना है, मैं फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, खुशी के लिए देखता हूँ, कैंसर को एक बहुत खुश तरीके से दिखाया है कि कैंसर होने के बाद ये उस चीज़ को पॉजिटिवली कैसे लेते हैं। कैंसर की बात की जाए ना तो बहुत लोग कहते हैं, स्पेशली मेरे जो फ्रेंड्स हैं हेल्थ इंडस्ट्री के फ्रेंड्स, मेरे एक मेंटर है लूक कुटिनियो, वो बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी कैंसर पेशेंट को पहले ये कहा जाता है कि पॉजिटिव रहो, आपकी पॉजिटिविटी के वजह से आपकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिखाया गया है 50-50 में। ये फिल्म देखो, एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, लाइफ के कोई भी लो मोमेंट से गुजर रहे हो, 50-50 आपको बचाएगा। आई थिंक जब मैं कॉलेज में था, मेरा एक बहुत ही लो फेज चल रहा था जिसके बारे में मैंने बहुत बात की है भैया वाइसअप पर, मेरे जिगरी दोस्त बंदा है अनुरित कांति, उन्होंने मुझे दिखाई थी और कहा कि भाई देख मैं तेरा सेथ रोगन हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है, देख लो। मैंने बहुत बार देखी है 50-50, मजा आएगा। सेवेंथ फिल्म, ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे हैं ना, प्यार की डार्क साइड है ये। ये फिल्म है जोसेफ गॉर्डन लेविट की, इसका नाम है 500 डेज ऑफ समर। स्टोरी बेसिकली ये है कि जोसेफ गॉर्डन लेविट को किसी से प्यार हो जाता है, उस बंदी को उस बंदे से प्यार नहीं है, उनका ब्रेकअप हो जाता है और उस ब्रेकअप के साथ ये इंसान कैसे डील करता है और ब्रेकअप से कैसे निकल कर आता है। मोस्टली जो लव स्टोरीज होती है वो प्यार के बारे में होती है, पैचअप के बारे में होती है, प्यार जीतने के बारे में होती है। ये फिल्म है प्यार की असलियत के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार बुरी चीज़ है, मैं ये ज़रूर डेफिनेटली 100% कह रहा हूँ कि प्यार के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक सुंदर एस्पेक्ट, खुश एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट होता है डार्क, पेनफुल, और उस दूसरे एस्पेक्ट के साथ कैसे डील करना है वो आप इस मूवी से सीखोगे। 500 डेज ऑफ समर बहुत ही अच्छी फिल्म है, मज़ा आएगा। ये सारे के सारे फिल्म्स ना थोड़े कॉमेडिक भी हैं, इतने ज़्यादा डार्क है कि आपको हंसी भी आ जाएगी। ओके, फिल्म नंबर 8, जिस डायरेक्टर ने द शाइनिंग बनाई थी, स्टैनली क्यूब्रिक, ये उनकी आखिरी फिल्म थी टॉम क्रूज के साथ। इस मूवी का नाम है आईज वाइड शट और इसमें तीन अलग अलग डार्क एस्पेक्ट्स हैं। पहला डार्क एस्पेक्ट है इनफिडेलिटी, चीटिंग के बारे में है ये फिल्म। बहुत सारे लड़के रिलेशनशिप्स में इनसिक्योर होते हैं, लड़कियां भी इनसिक्योर होती है रिलेशनशिप्स में, तो एक सब्जेक्ट है इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप की एक इनसिक्योरिटी। दूसरा सब्जेक्ट है लस्ट, सेक्स के पीछे भागना, और तीसरा सब्जेक्ट है, अब रेडी हो, इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी क्या होता है? इल्यूमिनाटी इस दुनिया के अमीर लोगों की एक, ऐसे कहा जाता है, अमीर लोगों की एक सोसाइटी है जो इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करती है। इस मूवी में बहुत ज़्यादा न्यूडिटी यानी कि नंगापन, बहुत ज़्यादा डार्कनेस यानी कि अंधेरा, और बहुत ज़्यादा सेक्स है। पर स्टैनली क्यूब्रिक ने डायरेक्ट की है, फिर से फिल्म मेकिंग मास्टरपीस है। आपको ये पता चलेगा कि आपके दिमाग में भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके दिमाग में भी सेक्स पड़ा हुआ है, और तो और आपको इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि इल्यूमिनाटी जैसी चीज़ है इस दुनिया में, शायद इस पर एक अलग पॉडकास्ट ही बना देंगे, पर मूवी फॉर्मेट में, सिनेमा में मैंने इल्यूमिनाटी की इस तरह की रिप्रेजेंटेशन देखी नहीं है जिस तरह से आईज वाइड शट में दिखाया गया है। अगर आपको भी इल्यूमिनाटी में इंटरेस्ट है, मुझे ये लगता है कि सभी लिसनर्स को इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तो प्लीज आईज वाइड शट देखिए। बहुत अजीब फिल्म है, उसकी एंडिंग भी अजीब है, आपको ये लगेगा कि यार फिल्म खत्म हो गई, और द ट्रूथ इज हाँ खत्म हो गई। स्कूल में हमारे डिस्क्रिप्टिव एसेज होते थे ना कि ये देखो बीच पर ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं, वहाँ समुंदर है, वहाँ वेव्स आ रहे हैं, उसी तरह आईज वाइड शट आपके खुद के डार्कनेस का एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। देख लो नाइन्थ मूवी, अच्छी मूवी है, डार्क मूवी है, इसका स्टार्ट बहुत डार्क है। और मैं एक और चीज़ आपको कहता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखी होगी आपने, गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में ये कहा जाता है कि यार ये बहुत डार्क शो है, और इस चीज़ को सुनकर जो गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर है जॉर्ज आर आर मार्टिन, उन्होंने ये कहा कि भाई तुझे लगता है ये डार्क है, तूने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है कभी, हिस्ट्री में इससे बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ें हुई है, वॉर्स में बहुत कुछ होता है, हुआ रहेगा, खून होता है, बुलेट्स होते हैं, सोर्ड फाइटिंग होती है, ये नहीं पता कि आपके इंटेस्टाइन्स बाहर गिर सकते हैं वॉर में, ये नहीं पता कि वॉर में शायद आपकी आंख के थ्रू एक एरो जाकर आपके दिमाग में घुस सकता है, ये नहीं पता कि लोग खून की उल्टी कर सकते हैं वॉर में, और ये सब आपको दिखेगा ब्रेव हार्ट में। ये मेरी नाइन्थ रिकमेंडेशन, मेल गिब्सन की एक बढ़िया मूवी है, अच्छी फिल्म मेकिंग है, सिनेमैटिक फिल्म मेकिंग है, ठीक है। ये फिल्म आपको हिस्ट्री का नेचर और वॉर का नेचर दिखा देगी, एंड भी बहुत ज्यादा इंटेंस है, आपको ऑलमोस्ट उल्टी आ जाएगी, बहुत डेथ दिखाई है इस मूवी में, पर ये असली हिस्टोरिकल अकाउंट है, ये सब हुआ था, इससे भी शायद गंदी गंदी चीजें हुई थी। मेल गिब्सन ने बढ़िया एक्टिंग की है, मूवी अच्छे से बनाई गई है, पुरानी फिल्म है, मेरे को लगता है बहुत लोगों ने देखी रहेगी, मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, आगे जाकर लाइफ में मैं भी बहुत हिस्टोरिकल स्टोरीज को फिल्म मेकिंग के थ्रू बताऊंगा, और मैं इतनी ही डार्क फिल्म्स और सीरीज़ को बनाऊंगा, और इन सारे प्लान्स के पीछे की इंस्पिरेशन है ब्रेव हार्ट। क्या फिल्म है, लंबी फिल्म है, बचपन में देखी थी, मैं कभी नहीं भूला उस फिल्म को, मोटिवेशन भी मिली थी मुझे उस फिल्म के थ्रू, बट बहुत डार्कनेस है, खून वून, मौत, जंग, एनिमल क्रूएल्टी सब दिखाई है फिल्म में। आई डोंट सपोर्ट एनिमल क्रूएल्टी और मौत और जंग, मैं योगी हूँ, आई थिंक योगी बन रहा हूँ, योगी नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ पर योगी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और फाइनल फिल्म, ये तो बहुत डार्क फिल्म है, और अब तक ना मैंने हर फिल्म के बारे में जोकिंगली बताया, यहाँ ये डार्क वो डार्क, आह ये दसवीं फिल्म तो, ये देखकर ना मुझे, मैं दो दिन तक अच्छे से खाना खा नहीं पाया। इस मूवी का नाम है 12 Years a Slave। आपने अफ्रीकन अमेरिकन की स्लेवरी के बारे में अगर कभी भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि कितने ज़्यादा ह्यूमन एट्रोसिटीज़ हुई, यानी कि इंसानों को कितना टॉर्चर किया गया, लोगों को अफ्रीका से लाया गया स्लेव बना के अमेरिका तक, और उन्हें स्लेवरी में डाला गया। कुछ 100-200 सालों बाद कुछ अमेरिकन स्टेट्स ने ऐसी एक लॉ बना दी कि अभी से स्लेवरी नहीं होगी, तो जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स थे वो स्टेट्स में, उनको ये कहा गया कि यार आप जाओ, अभी आप अभी स्लेव नहीं हो, आप अभी जॉब करो, पैसे कमाओ, फैमिली बनाओ। उनमें से एक स्टेट था न्यूयॉर्क, जो अभी भी न्यूयॉर्क है, और वहाँ एक फ्री मैन को, जो शायद काफ़ी सारे जनरेशन से फ्री था, उनके दादा परदादा को फ्री किया गया होगा, तो उनका जन्म फ्रीडम में पैदा हुआ, जैसे कि आपका जन्म और मेरा जन्म था। क्योंकि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन्हें किडनैप किया गया और उन्हें फिर से स्लेवरी में बेचा गया एक साउथ स्टेट में। कल सोचो अगर आपको किडनैप किया जाए और आपको एक स्लेव बनाया जाए, जहां आपको बहुत गंदी चीजें करनी पड़े, जहां आपको बहुत डिमीनिंग चीजें करनी पड़े, जहां आपको मैनुअल लेबर करना पड़े, एक स्लेव की लाइफ जीनी पड़े। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फिल्म है, और ये एक एडुकेटेड इंसान थे, और ये एक ट्रू स्टोरी है। जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई है ना उस फिल्म में, वो सब ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, और इस फिल्म से आपको ये पता चलेगा कि यार इंसानों का दिमाग इतना खराब भी हो सकता है, इतना गंदा भी हो सकता है, कोई कोई सीन्स में आपको उल्टी आने लगेगी, बहुत अनकंफर्टेबल फिल्म है, पर आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप शायद अच्छे इंसान होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं कि इस दुनिया में अच्छे ही इंसान भरे हुए हैं। ये फिल्म है आई थिंक 1850 के बारे में, जो कुछ 150 साल पहले की बात है, 150 साल पहले, 150 years, इस दुनिया की हिस्ट्री में बहुत कम टाइम है, अभी अभी इतनी सारी गंदी चीज़ें हो रही थी। इस फिल्म के बारे में मैं जोक भी नहीं करूँगा, देख लो, इतनी डार्क फिल्म है कि आपके डार्क भैया भी चौंक गए ये फिल्म देख के। तो ये था आज का डार्क पॉडकास्ट, अच्छा लगा तो शेयर कर दो, ये बताओ कि सोलो पॉडकास्ट और बनाए, और अगर आंसर इज येस तो ये बताओ कि मैं किस टॉपिक पर सोलो पॉडकास्ट बनाऊं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो इस पॉडकास्ट को। नमस्ते, ये है द रणवीर शो हिंदी।